धवला पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर 3। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं। जय उधरसेननाहो जेन महाकम्पयडिपाहुडसेलो बुद्धिशिरेणुद्धरियो समप्यो फुफयंतस। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें द्वितीय खंड है खुद्दाबंध नाम का। पहला जीवस्थान चला ना 6 पुस्तकों में, अभी यहाँ खुद्दाबंध है इसका नाम है। और उसमें भी अपना पृष्ठ संख्या 7वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या हम 25 पर आ गए, 25। खुद्दा यानी क्षुद्र, जैसे हमने महाबंध देखा वो तो अलग से बताया, और ये क्षुद्र बंध यानी इन शॉर्ट है। इसमें महाबंध में तो बहुत डिटेल्स है ना, सन्निकर्ष है वो बहुत ऊपर भी पुस्तक के ऊपर लिखा ना, क्षुद्रक बंध और उसके अगेंस्ट महाबंध। वो पूरा 6वां खंड जो है वो महाबंध है। अब यहाँ पहले कल हमने वो बंधक की बारी बात देखी, कौन से प्रकृतियों से क्या क्या बनता है उसकी बात देखी, उसके कारण की चर्चा की। अब यहाँ स्वामित्व अनुगम चालू हो जाता है। पृष्ठ संख्या 25 पर आए हम, स्वामित्व अनुयोग शुरू होता है यहाँ से, और इसमें इस अनुयोग का पहला सूत्र पढ़ेंगे हम। देखो, एदेसिम बंधयाणम परुवणठाए तथ इमानी एकारस अनियोग दाराणी नादववाणी भवंती। इन बंधकों की, जिस बंधकों की हमने चर्चा की है अभी, तो उन बंधकों की प्ररूपणा रूप प्रयोजन के होने पर, हमें बंधकों की प्ररूपणा करनी है तो उसका प्ररूपण 11 अधिकारों के द्वारा होगा, उसको अनियोग द्वार कहते हैं। तो इन बंधकों की प्ररूपणा रूप प्रयोजन के होने पर वहां ये 11 अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है। शंकाकार पूछते हैं, अन्य अर्थों में बंधकों के रहने पर इन बंधकों का इस प्रकार प्रत्यक्ष निर्देश कैसे बन सकता है, क्योंकि हमने बंधकों निक्षेप की अपेक्षा से कितने कितने अलग अलग देखे थे, तो उनमें से इन बंधक ऐसे कैसे कह सकते हो, ये उनका प्रश्न है। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि बंधक विषयक यानी बंधक के बारे में बुद्धि से प्रत्यक्षपने की अपेक्षा करके प्रत्यक्ष निर्देश की उपपत्ति बन जाती है। वो ये शंकाकार पूछते हैं, सामने बंधक हो तो हम ये है ऐसा कह सकते हैं, परंतु यहाँ तो कहते सामने हो या न हो, बुद्धि में तो हम ले सकते हैं उनको, तो बंधक विषय बुद्धि से प्रत्यक्षपना यानी बंधकों के बारे में हम बुद्धि के द्वारा सोचकर उनको प्रत्यक्ष कह सकते हैं, इसलिए ये इन ऐसा शब्द डाला उन्होंने। शंका, सत अनुयोग द्वार को पहले ही प्ररूपित न करके उसके साथ 12 अनुयोग द्वारों से बंधकों की प्ररूपना क्यों नहीं की जाती। अभी बंधक की सत प्ररूपना अपनी हो गई थी और वो उसके बाद ये 11 अनुयोग बता रहे, तो उनका ये कहना है कि सत प्ररूपना फिर स्वामित्व वगैरह ऐसे 12 अनुयोग द्वार क्यों नहीं बनाए, सत्प्ररूपना अलग से कहकर बाद में उनमें वो 11 अनुयोग द्वारों की चर्चा क्यों कर रही, इनका प्रश्न है। उसका समाधान नहीं, क्योंकि बंधक भाव से असिद्ध जीवों को बंधक सिद्ध करने वाली प्ररूपना के लिए बंधक प्ररूपना नाम देना अनुपयुक्त ठहरता है। क्या कहते हैं, बंधकों की सत प्ररूपना कौन बंधक है उसकी पहले चर्चा की, जिनमें जिन जीवों में बंधक भाव सिद्ध नहीं हुआ है, पहले सिद्ध करके बाद में उस पर जो बंधक है उन पर 11 अनुयोग द्वार लगेंगे, इसलिए पहले उसकी सिद्धि की, बाद में जो बंधक अभी नहीं कर कौन बंधक है कौन नहीं उसकी चर्चा हो गई। अब बंधकों के बारे में ये 11 अनुयोग द्वार बताएंगे, इसलिए टोटल 12 अनुयोग द्वार नहीं बताते हुए बंधक सत प्ररूपना अलग से करके बाद में इनकी चर्चा चल रही है। अभी अनुयोग द्वार कौन से है वो बताएंगे 11। उन 11 अनुयोग द्वारों के नाम निर्देश के लिए आचार्य अगला सूत्र कहते हैं। अगला यानी नेक्स्ट, नाम निर्देश यानी नाम का कथन करना, निर्देश करना यानी कथन करना, ये ऊपर 2 नंबर का सूत्र है। एक जीवेण सामित्तम, एक जीवेण कालो, एक जीवेण अंतरम, नाना जीवे ही भंग विचय। एक जीव क्योंकि वो नाना जीवों की अपेक्षा भी काल और अंतर अलग से घटित करते हैं, पहले एक जीव की अपेक्षा 3 ही बातें होती है, स्वामित्व काल और अंतर, फिर नाना जीवे ही भंग विचो, दव परुवणानुगमो, खेतानुगमो, होसनानुगमो, नाना जीवे ही कालो, अंतरम भागा भागवानुगमो, अप्पा भोगानुगमो चेदी। हिंदी नीचे देखते हैं, ये 11 नाम उन्होंने बताए हैं। एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, वहां हमने 1, 2, 3, 4 नाम डाले थे। एक जीव की अपेक्षा काल, एक जीव की अपेक्षा अंतर, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, द्रव्य प्ररूपणानुगम यानी उनकी संख्या, क्षेत्रानुगम ये सब नाना जीवों की अपेक्षा घटित हो जाता है, स्पर्शनानुगम नाना जीवों की अपेक्षा काल, अंतर भागा भागानुगम यानी वो सब नाना जीवों की अपेक्षा ही बातें हैं सब, और अल्प बहुत्व, ये उनके ये 11 नाम हैं। पृष्ठ संख्या 26 पर आते हैं। सूत्र के अंत में आया हुआ च शब्द समुच्चयार्थक है और इन बंधकों की, वो बंध छपा नहीं है बराबर, इन बंधकों की प्ररूपणा में इतने मात्र ही अनुयोग द्वार है, इनसे अधिक नहीं, ऐसा निश्चय कराने के लिए सूत्र में इति शब्द का प्रयोग किया गया है। लास्ट में इति लिख दिया ना, चेदी च इदि। शंका, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व का कथन सबसे पूर्व में ही क्यों किया जाता है, यानी यही अनुक्रम क्यों, यह भी उसका प्रश्न है। 11 अनुयोग द्वारों में पहले एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व क्यों कहा दिया, ये इनका प्रश्न है। नहीं, क्योंकि यह स्वामित्व संबंधी, स्वामित्व संबंधी अनुयोग द्वार आगे के समस्त अनुयोग द्वारों के नहीं अवस्थित है, ये कुछ गड़बड़ी है यहाँ पर, ऊपर पढ़ लेते हैं। प्राकृत में सेकंड लाइन लास्ट में ये पूछा था, एक जीवेण सामित्तम पूर्वमेव किमर्थम उच्चदे, यानी एक जीव का स्वामित्व सबसे पहले क्यों कहा, न यानी ऐसा कहना ठीक नहीं कहते, क्यों, उवरिल्ल सव्वयानियोग दाराणम कारणत्तेन सामित्तानियोग दारस्य अवठानादो। न यानी वो तो हमेशा शंकाकार पूछते तो न कहकर पहले रुकते, क्योंकि देखो उवरिल्ल यह स्वामित्व संबंधी अनुयोग द्वार आगे के समस्त अनुयोग द्वारों के कारणत्तेन कारण रूप से अवस्थित है चाहिए। नहीं कहाँ से शब्द आया बीच में पता नहीं, लास्ट टाइम हमने कैसे पढ़ा था, कुछ लिखा है क्या वहां पर? हाँ अरविंद भाई वहां कुछ लिख, पेज नंबर 26 यहाँ नहीं शब्द कैसा आया पता नहीं। स्वामित्व संबंधी अनुयोग द्वार आगे के समस्त अनुयोग द्वारों के नहीं अवस्थित है, ऐसा नहीं है। स्वामित्व संबंधी अनुयोग द्वार आगे के समस्त अनुयोग द्वारों के नहीं के बदले वहां कारण रूप से अवस्थित है। पेज नंबर 26 समाधान है ना, उसमें सेकंड लाइन में नहीं लिखा है और कॉमा दिया है, वो पूरे को राउंड करके उसको निकाल देना। हाँ उसके बदले कारण रूप से अवस्थित है। स्वामित्व अनुयोग पहले क्यों दिया? वो उसका कारण है, क्योंकि स्वामित्व बताएंगे तो आगे सभी बातें घटित होगी उसमें, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि ऊपर देखो ना, प्राकृत से मैंने अर्थ किया डायरेक्ट, ये आई नहीं अभी नवी पुस्तक में, क्या लिखा है पता नहीं उसके, मनीषा नहीं आई आज। नहीं नहीं, यह स्वामित्व संबंधी अनुयोग द्वार आगे के समस्त अनुयोग द्वारों के कारण रूप से अवस्थित है, नहीं के बदले कारण रूप से लिखना चाहिए वहां। इसका कारण यह है कि यानी वो अन्य अनुयोग द्वारों का कारण क्यों है ये फिर बता रहे, यानी उसको पहले क्यों कहना है कि 14 मार्गणास्थान औदयिकादि 5 भावों में से किस भाव रूप है, किस मार्गणास्थान का स्वामी निमित्त होता है या नहीं होता, यह सब स्वामित्व अनुयोग द्वारा प्ररूपित करता है। क्योंकि मार्गणाओं में अभी हमें सब ये घटित करना है बंधकों की बात, तो पहले स्वामित्व बताएंगे तो कौन से मार्गणा में कौन से क्या बात है उसकी विशेषता वो सब समझ में आ जाती है। पुनः उसी भाव से उपलक्षित मार्गणा के होने पर बंधकों में शेष अनुयोग द्वारों की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी लगती है, ऊपर ऊपर से ही पढ़ते आज। ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5 छठी लाइन प्राकृत में पुनो पहले ये बात बताई उन्होंने कि औदयिकादि जो 5 भाव में से कौन सा भाव कौन से मार्गणा में किस भाव रूप होते, कौन सी मार्गणा है उन 5 भावों में उनमें कौन कौन से भाव होते वगैरह वगैरह। अब कहते हैं पुनो तेन भावेन उलक्ष्य मग्गणाए बंधयेषु शेषाणियोगद्दार पवृत्तियो, यानी पुनः उसी भाव से उपलक्षित यानी उससे जो बताया जाता है मार्गणा के मग्गणाए बंधयेषु, मार्गणा के बंधकों में चाहिए, होने पर का कुछ मीनिंग नहीं वहां पर। अभी मैं वाक्य फिर पढ़ती हूँ, यह सब स्वामित्व अनुयोग द्वार प्ररूप करता है। पुनः से कहना है हमको, उसी भाव से उपलक्षित मार्गणा के बंधकों में शेष अनुयोग द्वारों की प्रवृत्ति होती है। होने पर की जरूरत नहीं वहां पर, यानी वो जो कौन सा भाव है औदयिक है या कौन सा है, उस भाव जिस मार्गणा में है उस मार्गणा के जो बंधक है उनमें आगे के अनुयोग द्वार घटित होते हैं, बस इतना है। पेज नंबर 26 निकालना, और आप में क्या लिखा है अभी आपकी याद की थी, क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ी है हिंदी ट्रांसलेशन में। क्योंकि हम ऊपर प्राकृत के अनुसार देख सकते हैं ना नीचे क्या चल रहा है, यहाँ अर्थ घटित नहीं हो रहा है। मार्गणा के होने पर बंधकों में ऐसा वो 26 यहाँ स्वामित्व अनुयोग द्वार चल रहा है। हाँ ब्रह्मा आप ही पढ़कर बताना, समाधान पढ़ो पूरा। हाँ ये वही भूल उन्होंने कायम रखी है। हाँ यानी जो जो भूले हमने निकाल के दिए तो निकालते हैं, क्योंकि हमने उसमें अन्य तो ठीक है। और आगे बढ़ो,
इसका यह कारण है कि 14 मार्गणास्थान औदयिकादि 5 भाव जैसे कि
किसी का किस किस भाव रूप है, किसी भाव रूप है, हाँ हाँ ये होने पर का अर्थ नहीं चाहिए, होने पर नहीं चाहिए, पेंसिल से उसको निकाल दो। उसी भाव से उपलक्षित मार्गणा के बंधकों में, है ना, यानी उस मार्गणा का कौन सा भाव है, उन बंधक उस मार्गणा के बंधकों में शेष अनुयोग द्वार घटित होते हैं। वे पेंसिल से करो, वो नहीं के बदले कारण रूप से लिखो। यानी पहले में पहले सबसे स्वामित्व तो क्यों बताना, तो स्वामित्व बताया जाए तो उसके आगे की बातें फिर उसमें घटित हो जाएगी। स्वामित्व ही नहीं पता चला किसको क्या होता है, हाँ तो आगे की बातें नहीं हो सकती। अब हम आगे की शंका पढ़ते, फिर शेष अनुयोग द्वारों में। अभी पहला अनुयोग द्वार कौन सा बताया, स्वामित्व, दूसरे नंबर काल, एक जीव की अपेक्षा काल, यानी शेष यानी अभी 2-10 बच्चे है उसमें, अभी काल को क्यों पहले कह रहे हैं, ये उनका कहना है, शंका कर रहा है। शेष अनुयोग द्वारों में काल ही पहले क्यों प्ररूपित किया जाता है, उसका समाधान नहीं, क्योंकि काल की प्ररूपणा के बिना अंतर प्ररूपणा की उपपत्ति नहीं बैठती। यदि काल ही पता नहीं होगा उस मार्गणा का वगैरह, तो फिर उसका अंतर कैसे घटित होगा, उपपत्ति ने उत्पत्ति, प्ररूपणा की निष्पत्ति उत्पत्ति, यानी वो अन्य प्ररूपणा नहीं कह सकते। काल अगर नहीं समझे, काल की कथन बिना अंतर का कथन नहीं बन सकता, उपपत्ति नहीं होती, बन नहीं सकता, अतः अंतर ही कहना चाहिए, अतः नहीं, एक मिनट ऊपर क्या, न काल, नीचे से चौथी लाइन पढ़ रही हूं मैं, न काल परुवणाए बिना अंतर परुवण अनुवत्ती दो, यहाँ तो फुल स्टॉप हो गया उसके, यहाँ फुल स्टॉप देना चाहिए, दंड, पुनो अंतरमेव वत्तव्यम, अतः नहीं पश्चात अंतर ही कहना चाहिए, अतः के बदले पश्चात करो, क्योंकि पुनो ने फिर उसके बाद पश्चात, क्योंकि काल की बात हो गई, काल के बाद अंतर ही कहना चाहिए, यानी अन्य कोई अनुयोग द्वार वहां नहीं आ सकता, अंतर ही कहना चाहिए, क्योंकि एक जीव से संबंध रखने वाला अन्य कोई अनुयोग द्वार नहीं पाया जाता, क्योंकि हमने एक जीव की अपेक्षा स्वामी तो देखा, काल देखा, अभी उसी को एक ही, एक जीव की अपेक्षा तीन ही अनुयोग द्वार होते हैं, इसलिए यहाँ अंतर ही कहना चाहिए। इसी क्रम से क्यों कहना है उसकी बात यहाँ चल रही, ऐसा ही क्रम क्यों रखा। शंका पेज नंबर 26 ना, नीचे की शंका, अभी क्या बचे हैं, एक जीव के संबंधित स्वामित्व हुआ, काल हुआ, अंतर हुआ, 11 में से 3 हो गए, भी 8 बचे। अब ये सब नाना जीवों की बात है, तो नाना जीवों में पहला अनुयोग द्वार कौन सा देखा, भंग विचय, तो उसी को पहला क्यों लिया, अब ये प्रश्न पूछेंगे। नाना जीव संबंधी शेष अनुयोग द्वारों में, शेष यानी अभी 8 बचे ना, पहले नाना जीवन की अपेक्षा भंग विचय ही क्यों कहा जाता है, एक 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 के लिए उसके प्रश्न चल रहे। समाधान नहीं, क्योंकि इस मार्गणा स्थान के प्रवाह का एक विशेष विशेषण है, उसके एक भेद अनादि अनंत है, इसी तथा मार्गणा स्थान के इसी ने तथा इसी मार्गणा स्थान के प्रवाह का एक भेद सादि शांत है, ऐसा सामान्य रूप से जान लेने पर शेष अनुयोग द्वारों का अवतार संभव है। ऊपर क्या लिखा है, एदस्य मग्गण ठान पवास विशेषो अनादि अपज्जवसिदो एदस्य सादि सपज्जवसिदो ती सामान्येन अवगदे शेषानियोग द्वाराणं पदन संभवादो। तथा तो हमने कर दिया, पढ़ा भी हमने, तथा इसी मार्गणा स्थान के, देखो क्या कहने, मार्गणा स्थान के प्रवाह, यानी ये नाना जीवन की अपेक्षा भंग विजय जब कहते हैं एक जीव अनेक जीव, या केवल उसमें कहेंगे एक कोई जीव नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना। उसमें वो मार्गणास्थान कुछ काल के लिए रुक भी जाए ऐसा भी हो सकता है, जैसे मनुष्य लब्धि अपर्याप्त कुछ काल के लिए नहीं भी हो, ये बात बन सकती है। सांतर मार्गणा भी होती है, वही कहते हैं कोई मार्गणा अनादि अनंत है। नाना जीवन की अपेक्षा बात चल रही, एक जीव की अपेक्षा नहीं। एक जीव की अपेक्षा तो मार्गणा छोड़कर अन्य मार्गणा में जा ही सकता है, पर नाना जीवों की मार्गणाएं कुछ तो अनादि अनंत है। जैसे एक इंद्रिय जो अनादि अनंत, उसमें कोई ना कोई जीव रहेगी ही रहेगी, पर ऐसी कुछ मार्गणाएं कि जिसमें सांतर मार्गणा जिसको कहते हैं, आपको कोई ऐसी सांतर मार्गणाएं मालूम है? हाँ, सासादन गुणस्थान है, तीसरा गुणस्थान है, आठवां नौवा दसवा कुछ मार्गणा नहीं है, उसको मार्गणा नहीं कहते। कौन सी ऐसी मार्गणा है जैसे सासादन और मिश्र, ये मार्गणा है सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा, इसलिए उस गुणस्थान को नहीं लेना, वो मार्गणा लेना। और कोई मालूम है? वैकृत मिश्र। हाँ सूक्ष्म सांप्राय, क्योंकि वो संयम का एक भेद है। आहार कहार अक्षरी नहीं, वो मार्गणा में लेना उसको। हाँ योग मार्गणा में ले सकते हैं, उसमें आहार कारक मिश्र का योग को ले सकते हैं। फिर और औपशम सम्यक्त्व, ये सांतर है, लब्धि अपर्याप्त मनुष्य पर्याप्त, ये सांतर है, इसको कहते हैं सांतर मार्गणा। तो कोई मार्गणा प्रवाह रूप से अनादि अनंत है, और कोई कैसे है साधी शांत भी होती है कुछ, क्योंकि उसके बीच में अंतर है, उसका अर्थ है साधी शांत है, इसलिए उसकी अपेक्षा यहाँ भंग बताए सब। ये पहला क्यों कहा इसकी बात चल रही है। फिर पढ़ती हूँ मैं ये वाक्य 26 का लास्ट लाइन, यानी वो नाना जीव संबंधी अन्य जो अभी शेष अनुयोग द्वारों में भंग विचय को पहले क्यों कहा, उसका कारण क्योंकि इस मार्गणा स्थान के प्रवाह का एक भेद, एक विशेषण, एक भेद अनादि अनंत है, तथा वो इसी शब्द बाद में चाहिए, तथा इसी मार्गणा स्थान के प्रवाह का एक भेद सादी शांत है, ऐसा सामान्य रूप से जान लेने पर, यानी जब हमें वो समझ में आ जाती है, क्योंकि वो भंग विचय में तो उसी की बात चली जाएगी, शेष अनुयोग द्वारों का अवतार संभव है, क्योंकि उसमें आएगा एक भी जीव बंधक ने, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो मार्गणा ही रहेगी तो उसमें बंधक कैसे रहेंगे। इस अपेक्षा से वो सांतर मार्गणा की अपेक्षा ये बात बताई है। और जो अनादि अनंत भेद है वो निरंतर मार्गणा की बात है। अब 27 पेज पर सेकंड लाइन, अब कितने रहेंगे साथ, उसमें अभी किसका नंबर है, द्रव्य प्रमाणानुगम यानी संख्या बताई जाएगी। तो द्रव्य प्रमाण के जाने बिना, द्रव्य प्रमाण का अर्थ होता है संख्या, जाने बिना क्षेत्रादि शेष अनुयोग द्वारों के जानने का उपाय नहीं, क्योंकि क्षेत्र कैसे निकालते, एक जीव की इतनी अवगाहना है तो इतने जीव उसमें रहते, उनकी अवगाहना कितनी हो सकती है, ये ऐसा क्षेत्र या उनका रहने का ठिकाना, तो बाद में वो कह सकते हैं, इसलिए पहले संख्या बताई। इसलिए द्रव्यानुयोग द्वार का उनसे पहले स्थापन किया गया है। फिर उनमें भी वर्तमान स्पर्शन प्ररूपणा के बिना, अतीत और वर्तमान स्पर्शन के प्ररूपक स्पर्शनानुयोग द्वार के जानने का उपाय नहीं, इसलिए क्षेत्रानुयोग द्वार का पहले निर्देश निवेश किया, निवेश ने वो प्रकट उसको पहले ले लिया। क्या कहना चाहते है? क्षेत्र और स्पर्शन में पहले स्पर्शन को क्यों नहीं लेना, तो कहते वर्तमान का पहले बताएंगे ना, तब फिर अतीत और वर्तमान की बात फिर दोबारा बता सकते हैं, इसलिए क्षेत्र को पहले लिया, बाद में स्पर्शन को लिया। मार्गणाओं संबंधी निवास क्षेत्र को जान लेने पर और उनके द्रव्य प्रमाण का भी ज्ञान हो जाने पर, पश्चात अतीत काल संबंधी स्पर्शन प्ररूपणा न्यायागत है, न्याय से आने वाली है। क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्र में हम क्या देखते हैं, उस मार्गणा संबंधी वर्तमान क्षेत्र, उन जीवों का रहने का वगैरह वगैरह वो क्षेत्र, और फिर उनमें संख्या भी हम जानते हैं, तो उस संख्या को जान लिया और क्षेत्र को भी जान लिया, तो अभी हम अतीत काल की प्ररूपणा को जान सकते हैं, यानी स्पर्शन को उसमें डिराइव कर सकते हैं उसका, इसलिए उसे पहले रखा गया। अब क्षेत्र और स्पर्शन के बाद नाना जीवों की अपेक्षा काल और अंतर बताएंगे। मार्गणा संबंधी काल का जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक उनकी अंतर प्ररूपणा नहीं बनती। इन विशिष्ट मार्गणा का नाना जीवों की अपेक्षा काल की बात चल रही है, एक जीव की अपेक्षा बात पहले बता चुके थे, पेज नंबर 27। अतः उससे पूर्व कालानुयोग द्वार का प्ररूपण किया गया। काल अंतर की योनि है, यानी काल के द्वारा फिर अंतर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि शादी शांत काल बताया ने उसका वो अंतर पड़ने ही वाला है, तो फिर अंतर की भी बात बताएंगे। ऐसा जानकर काल के अनंतर अंतरानुयोग द्वार प्ररूपित किया गया। आगे कहे जाने वाले अल्प बहुत्व का साधन होने से पहले भागा भाग प्ररूपित किया जाता है, यानी टोटल बंधकों के कितने भाग प्रमाण है ऐसी बात उसमें आती है, या मार्गणा में इतने जीव है तो उस पर्टिकुलर बंधक जीव कितने हैं उसकी चर्चा होगी उसके अंदर। और इन सब के पश्चात अल्प बहुत्वानुगम प्ररूपित किया गया, क्योंकि वह पूर्ववर्ती सभी अनुयोग द्वारों से संबद्ध है, संबद्ध है उसे रिलेटेड है। इसलिए इस तरह हमने 11 अनुयोग द्वार देखे, कौन कौन से, एक जीव की अपेक्षा द्रव्य प्रमाण नहीं, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व काल और अंतर, ये एक जीव की, फिर नाना जीव के 8 है, पहला भंग विचय द्रव्य प्रमाण अनुगम, क्षेत्र स्पर्शन काल और अंतर, भागा भाग भाव नहीं यहाँ लिया, भागा भाग और अल्प बहुत्व। क्योंकि भागों की बात ये नहीं, वो तो भाव की बात तो बता चुके हैं ना, सत्प्ररूपणा में बंधक वाला भाव, वो पांच भाव में से कौन से भाव से होता है, वो उदय की भी बात वहां बताई थी उन्होंने। अब शंका 27 पेज भी चल रही, नाना जीवों की अपेक्षा काल और नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, इन दोनों में क्या भेद है, क्या भेद है ना, क्या डिफरेंस है, एक ही तो लगता है ना, उसका समाधान नहीं, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय नामक अनुयोग द्वार मार्गणाओं के विच्छेद और अविच्छेद के अस्तित्व का प्ररूपक है। क्या कहते हैं, जब हम भंग विचय कहते हैं नाना जीवों की अपेक्षा, यानी उस मार्गणा में एक जीव है अनेक जीव है वगैरह जो वहां बात बताएंगे, तो उसके द्वारा वो मार्गणा शांतर है कि निरंतर ही नक्की हो जाता है, विच्छेद है वो नष्ट हो जाना। फिर से नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय नामक अनुयोग द्वार मार्गणाओं के विच्छेद और अविच्छेद के अस्तित्व का प्ररूपक है। विच्छेद यानी वो शांतर मार्गणा, वो मार्गणा नाना जीवों की अपेक्षा उसमें कोई जीव नहीं है, तो उस मार्गणा का नाना जीवों की अपेक्षा विच्छेद हुआ ऐसा उसका कथन है। और अविच्छेद का अर्थ होता है वो हमेशा ही उसमें जीव रहेंगे, जिसको हम निरंतर मार्गणा कहेंगे, वो बात नक्की हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। अतः उसका मार्गणाओं के काल और अंतर बतलाने वाले अनुयोग द्वारों के साथ एकत्व मानने में विरोध आता है, यानी काल तो बाद में घटित हुआ ना, पहले निरंतर है कि शांतर है घटित हुआ, जो निरंतर है तो अनादि अंत काल कहेंगे, उसमें तो सदा काल कहेंगे, यहाँ काल कब घटित होगा, जो शांतर मार्गणाओं में घटित होगा, फिर वो कितने काल तक लगातार उसमें जीव रह सकते वो बात बताएंगे, बाद में अंतर कितना पड़ता है वो बताएंगे नाना जीवों की अपेक्षा। अब ये 11 अनुयोग द्वार बताए, अभी उसके एक एक अनुयोग द्वार को लेंगे। ये जीवेण सामित्तम, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व की प्ररूपणा की जाती है, जैसा उद्देश्य होता है उसी के अनुसार निर्देश किया जाता है, यानी जो हमारा प्रयोजन है उसके अनुसार कथन किया जाता है। इस न्याय का अनुसरण करने के लिए एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व का वर्णन करेंगे, ऐसा प्रस्तुत सूत्र में कहा गया है। अब चार नंबर का सूत्र गतियाणुवादेन, यानी गति मार्गना की वो अनुयोग द्वार के गतियाणुवादेन निरय गदीये नेरयो नाम कदम भवति। गति मार्गनानुसार नरक गति में नारकी जीव किस कारण से है, ये मार्गना है ना, हमने 14 मार्गना देखी थी। नाम याद है कि भूल गए, थोड़ा याद है कि बोलो बोलो। योग, देखो तीन तीन जोड़ी, तीन तीन का देखो, गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्य सम्यक्त, फिर दो ही रह गए संगी और आहार। अब ये रोज ही यही बातें आने वाली है, याद तो हो ही जाने वाला है। तो ये सूत्र है गति मार्गनानुसार नरक गति में नारकी जीव किस कारण से है, इसका उत्तर तो देंगे नेक्स्ट सूत्र में, उसके पहले यहाँ चर्चा है। शंका, यह प्रश्नात्मक सूत्र किस आधार से रचा गया है, यानी प्रश्न पूछने का कारण क्या है? तो कहते यह प्रश्नात्मक सूत्र नए समूह के आधार से रचा गया है। क्यों नए समूह का आधार क्या अर्थ है? नए अनेक होते हैं, पर उनमें से यहाँ कौन से वाले नए लागू होता है, इसमें कोई संशय उत्पन्न हो सकता है, इसलिए प्रश्न पूछा है। फिर से देखो प्रश्न क्या पूछा था कि गति मार्गना के अनुसार नरक गति में नारकी जीव किस कारण से है, तो कहते ये ऐसा प्रश्न क्यों पूछा, तो उसके समाधान में बता रहे हैं यह प्रश्नात्मक सूत्र नए समूह के आधार से रचा गया, वो समह हुआ है समूह करो ब्रह्मा, नए समूह के आधार से रचा गया है। यदि एक ही नए होता तो कोई संदेह भी उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अभी कल बात आई थी ना वो असद्भुत व्यवहार नए और सद्भुत में, फिर कन्फ्यूजन है ये क्या होता है, किस नए का क्या अर्थ होता है। किंतु नए अनेक है इसलिए संदेह उत्पन्न होता है कि किस नए के विषय का आश्रय लेकर, नए का विषय का अर्थ होता है नए क्या करता है, किसी एक अपेक्षा को लेकर उसकी अपेक्षा से वो द्रव्य का या उनकी चीजों का, यहाँ तो बंधकों की बात है, तो उनका कथन करता है। तो कहते उस नए का विषय कौन सा है, क्या पूछ रहे कि किस नए के विषय का आश्रय लेकर स्थित नारकी जीव का यहाँ ग्रहण किया गया है, यानी नारकी जीवों के भी अलग अलग नयों से वो अलग अलग हो सकते हैं, है ना, कौन से नए का विषय है ये नारकी जिनकी बात कर रहे हैं आप। यहाँ पर नयों का अभिप्राय बतलाते हैं वह इस प्रकार है, यानी वो नारकियों के ऊपर नए लगा के बताएंगे। एक नंबर की गाथा उसका अर्थ नीचे देखेंगे। कंपिनरम दठूणय पावजन समागमम करे मानम नेगमनयेन बन्नई नेरयो एष पुरिसोक्ति। किसी मनुष्य को पापी लोगों का समागम करते हुए देखकर नेगम ने से कहा जाता है यह पुरुष नारकी है। क्या कहा, अभी है अभी वो मनुष्य उन पापी लोगों के साथ वो अन्य कार्यों में जुड़ा है, तो उसको कहेंगे ये नारकी है, अपेक्षा लगाई ना वो उस नए से कह दिया। वो कौन सा नए, उसको कहते नेगम ने। ये नए कौन कौन से होते मालूम है, हाँ बोलो। हाँ नेगम वही वही शब्द ही निकाले एकदम। हाँ हाँ सम भी रूढ़ के बाद क्या बताए, हाँ रूढ़ी नहीं नहीं उसको सम भी देखो। मैं जब आपको ये बात यहाँ से पहली पुस्तक में से बताना चाहती हूँ, नए किसे कहते हैं? अनेक गुण, 12 नंबर का पेज है पहली पुस्तक में। अनेक गुण और उनके अनेक पर्यायों सहित अथवा उनके द्वारा एक परिणाम से दूसरे परिणाम में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और एक काल से दूसरे काल में अविनाभाव स्वरूप स्वभाव रूप से रहने वाले द्रव्य को ले जाते हैं, उसका ज्ञान करा देते हैं, उसको नए कहते हैं। अभी इसकी बात छोड़ो, ये यानी नए क्या करता है, किसी विवक्षित धर्म द्वारा द्रव्य का बोध कराता है। पेज नंबर 12। यानी सामान्य से कथन करना वो द्रव्यार्थिक नहीं होता है, और उसके भेदों का विशेषों का विस्तार से वो उसका कथन करना वो व्यवहार ने भेद करके कथन करता है, और द्रव्यार्थिक ने यानी वो व्यवहार ने और द्रव्यार्थिक ने सामान्य से ग्रहण करता है। अब उसके बाद वो संग्रह वगैरह उसकी बात है। पहले में पहले वो द्रव्यार्थिक ने दो प्रकार का है, संग्रह ने और व्यवहार ने। संग्रह ने किसको कहेंगे, जैसे द्रव्य कह दिया तो द्रव्य में सभी 6 द्रव्य गर्भित हो गए तो उसको संग्रह ने कहेंगे, और उसी में जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य हमने भेद किया, ये व्यवहार नहीं हुआ। पहला संग्रह ने सबको इकट्ठा बताया, फिर उसके भेद करके बताया, वो व्यवहार नहीं। जीव द्रव्य ऐसा कह दिया, वो संग्रह किया, और उसमें संसारी मुक्त वगैरह भेद किए, वो व्यवहार हुआ। इस तरह से हमारी अपेक्षा अभिप्राय क्या है उसको हम संग्रह या व्यवहार नहीं कह सकते, ये हो गए दो। यानी अभेद को विषय करता है वो संग्रह नहीं हुआ, और उसके भेदों को विषय करता है वो व्यवहार नहीं। ये पेज नंबर 13 की बात मैं पढ़ रही हूँ। अब उसके वो उत्तर उत्तर भेद वो जाने दो। तो जो है पहला तो नैगम नयने, द्रव्य वही है, उसके भूत या भविष्य की पर्यायों का भी वर्तमान में वही का वही द्रव्य है, तो उसको न एकम उसको नैगम कहें। दो को विषय करने वाला नैगम ने, नैगम संग्रह व्यवहार। अब रुजु सूत्र ने जो है वो रुजु सूत्र ने क्या करता है, वर्तमान पर्याय को विषय करता है, फिर शब्द में उसमें स्पेसिफिक बताता है। हाँ, वो व्याकरण का दोष टाल कर वो शब्द होना चाहिए। समभिरूढ़ ने भले उस शब्द के अनेक अर्थ होते पर रूढ़िगत जो अर्थ है उसको ले लिया था। और अंतिम है एवं भूतने, एवं भूतने ने उस पर्याय से परिणत द्रव्य को वो विषय करता है। ये नए में लेना है वो विषय करने वाला ज्ञान, और हमने वो द्रव्य निक्षेप में रखा था भाव निक्षेप, निक्षेप में उस पर्याय से परिणत वो गेय, और नयों में उसको जानने वाला उसको विषय करने वाला ज्ञान, जो वर्तमान विषय करता है वर्तमान उस रूप परिणत। ये विषय में अगर गेय की बात कर रहे हैं तो उसको हम भाव निक्षेप में लेते हैं, और अगर उसको विषय करने वाला ज्ञान कहते हो तो उसको एवं भूत नए कहते हैं। ऐसे इसके भेद है सामान्य से, भी बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे हम उसमें। अभी हमने नाम देखे ना, ये 7 अलग अलग जुदे जुदे है, तो यहाँ नारकी पर कौन सा नए लगाना क्या लगाना, तो अलग अलग नयों से नारकी भी जुदे जुदे जीवों को नारकी कहने में आता है, उसकी बात यहाँ हमने पहली क्या बात देखी, पापी जीवों के 7 समागम वाले हैं तो उसको भी नारकी कह देते हैं हम। अब दूसरी बात, ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, जब वह मनुष्य प्राणीवध करने का विचार कर सामग्री का संग्रह करता है। नहीं नहीं, वो ब्रैकेट क्योंकि उसमें कोई गाथा नहीं है, उन्होंने अपने ओर से डाला है, तब वह संग्रह नहीं से नारकी कहा जाता है, इसको थोड़े संग्रह कहते हैं। उसमें कुछ लिखा है ब्रैकेट, वही लिखा है, ठीक है। संग्रह नहीं किसको सबको इकट्ठा करना उसको संग्रह कहते हैं, ये सामग्री का संग्रह करने को ये घटित नहीं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नैगम नैगम कह सकते हैं, परंतु नहीं नहीं, रहने दो, अभी हम आगे बढ़ेंगे। 29 पेज पर आते हैं, 2 नंबर का सूत्र। उन्होंने जो ऊपर गाथा है उसका जो अर्थ है उसको तो लेते हुए चलेंगे। വവഹാരസ്സദ്വയണം ജയ്യാ കോദണ്ഡകണ്ഡഗയഹത്തോ ഭമൈമയേ മഗ്ഗന്തോ തയ്യാസോ ഹോയി നേരയ്യോ. വ്യവഹാരനെ കാ വചന ഇസ് പ്രകാര ഹൈ, ജബ് കോയി മനുഷ്യ ഹാത്ത് മേ ധനുഷ് ഓർ ബാൻ ലിയേ മൃഗോ കി ഖോജ് മേ ഭടക്താ ഫിർതാ ഹൈ, തബ് വഹ നാർകി കഹലാതാ ഹൈ. ये अन्य अन्य अपेक्षाओं से किसे नारकी कहते उसकी बात चल रही है. तीसरा, उज्जुसुदस्सदुवयनम जयाथाणम मे आहन दिमये पाओ तैया सो हो इने रहियो. रुजुसूत्र नय का वचन इस प्रकार है, आखेट स्थान पर, आखेट यानी वो शिकार, शिकार को आखेट कहते हैं ना, आखेट स्थान यानी शिकार की जगह जो वन जंगल में पापी मृगों पर आघात करता है. मृग यानी वो तो पशु, यानी वो शिकार कर रहा है उस स्थान पर, तब वह नारकी कहलाता है. ये ऋजु सूत्र यानी वो करता हुआ, हाँ. फिर भी वो नरक का नारकी नहीं है, अभी वो प्राणियों का घात कर रहा है तब उसको नारकी कह दिया, क्योंकि नरक के योग्य परिणाम कर रहे हैं ना, इसलिए उसको नारकी कह दिया. अब आगे चार नंबर, सद्दनयस्सदुवयनम जय्या पाणे हिमोहिदो जंतु तैया सो नेरयो हिंसा कम्मेण संयुक्तो. शब्दनय का वचन इस प्रकार है, जब जंतु, जंतु ने वो प्राणी प्राणों से विमुक्त कर दिया जाए, तभी वह आघात करने वाला हिंसा कर्म से संयुक्त मनुष्य नारकी कहा जाए. शब्द ने अभी उसमें स्पेसिफिक, उसका मरण हो जाए, वो प्राण उसके निकल जाए, उस समय का ले लेना. शब्द ने जिसको स्वीकार किया उसमें और फिल्टर लगाते, स्पेसिफिक हो जाते, वही शब्दों को वहां ग्रहण किया जाएगा. अब छह नंबर, निरय गतिम संपत्तो, ये पांचवा नंबर हुआ कि नहीं, नहीं सम अभिरूढ़ रह गया, पांचवा नंबर पढ़ते. वयनम तु सम अभिरूढ़ नारयकम मस्स बंधगो जय्या तैया सो नेरयो नारयकम मेण संयुक्तो. सम अभिरूढ़ नय का वचन इस प्रकार है, जब मनुष्य नारक कर्म का बंधक होकर नारक कर्म से संयुक्त हो जाए, तभी वह नारकी कहा जाए. यानी अभी उसके नारका नरकाय वगैरह बांध ली है, अब उसको नारकी कह देंगे, उस मनुष्य को. अब एवं भूतनय की बात होगी छह नंबर में, निरय गयम संपत्तो जय्या अनुहवई नारयम दुखम तैया सो ने रहियो एवं भूदोणो भणदी. जब वही मनुष्य नरक गति को प्राप्त होकर नरक के दुख अनुभव करने लगता है तभी वह नारकी है, ऐसा एवं भूत नय कहता है. यानी उस भाव से परिणत, यानी वहाँ नरक गति देव नाम कर्म वगैरह तो बांधे थे, आर्यु बांधी थी उसने, पर अभी वहां जाकर उसके दुखों को भोग रहा है, तब उसको नारकी कहेंगे. ये एवं भूत नय है. इन समस्त नयों के विषयभूत नारकी समूह का विचार करके ही नारकी जीव किस प्रकार होता है यह प्रश्न किया गया है. वहां विचार था गति मार्गणा के अनुसार नरक गति में नारकी जीव किस कारण से है, अथवा करके अभी निक्षेप लगाएंगे. नाम स्थापना द्रव्य और भाव के भेद से नारकी चार प्रकार के होते हैं. नाम नारकी, नारकी शब्द को ही कहते हैं. नाम नारकी किसको कहेंगे, नारकी शब्द को. नारकी शब्द इटसेल्फ है, नाम नारकी हुए, नारकी ये नाम हो गया उसका. वह यह है ऐसा बुद्धि से विवक्षित नारकी का विवक्षित वस्तु के साथ एकत्व करके, जैसे हम कहेंगे ना कि हमने कुछ खिलौने बनाए, ये चार गति के जीव है, तो हमने कोई बना दिए, उसके आकार वाला हो या बिना आकार कैसा भी, हम कहने ये नारकी है, ये तीर्यंच है, ये मनुष्य है, ये देव है, ऐसा कह सकते हैं, वो एक चीज में हमने दूसरे की स्थापना कर दी। तो एकत्व करके सद्भाव और असद्भाव स्वरूप से, कल हमने ये निक्षेपों की चर्चा की थी, स्थापित स्थापना नारकी कहलाता है। नारकी संबंधी प्रावृत, अभी हमने द्रव्य निक्षेप लगाए थे याद है ना, आगम और नुआगम। आगम में नारकी संबंधी प्रावृत को जानने वाला जीव लेना है, परंतु उसमें उपयोग से रहित लेना, अन्य किस चीज में उसका उपयोग है। तो कहते हैं कि नारकी संबंधी प्रावृत का जानने वाला किंतु उसमें अनुपयुक्त जीव, वो अभी आगम में उसका उपयोग नहीं, अन्यत्र है। आगम द्रव्य नारकी है, उस जानने वाले जीव को आगम द्रव्य नारकी कहा क्योंकि जानने वाले तो कोई मुनि भी हो सकते हैं ना, वो नारकी संबंधी अनुयोग को जान रहे तो उस उन जीवों की बात है। हाँ, अब नौ आगम में किस किस को लेना, कल हमने देखे थे ज्ञायक शरीर भव्य और तद व्यतिरिक्त। हाँ, तो ज्ञायक शरीर के नहीं, उस जानने वाले जीव का शरीर, वो भूत का हो सकता है, वर्तमान का या भविष्य का। भव्य में वो जीव अभी नहीं जानने वाला, भविष्य में जानेगा। तद व्यतिरिक्त में हमने कर्म या नौकर्म रूप ले लेते उसके। तो कहते ज्ञायक शरीर भव्य और तद व्यतिरिक्त भेद से अनागम द्रव्य नारकी, अनागम यानी नौआगम, उसको अनागम कहा, हमेशा हम उसको नौआगम कहते हैं। अनागम द्रव्य नारकी तीन प्रकार का है, ज्ञायक शरीर और भव्य ज्ञात है। ज्ञायक शरीर ने उसके शरीर को कहा, भव्य ने जीव को कहा जो अभी नहीं जान रहा है, भविष्य में जानेगा। कर्म और नौकर्म के भेद से तद व्यतिरिक्त नौआगम द्रव्य नारकी दो प्रकार का है। अब कर्म नारकी किसको कहेंगे, कर्म नौआगम, तो नरक गति नाम कर्म के साथ प्राप्त हुए कर्म द्रव्य समूह को कर्म नारकी कहते हैं। क्या कहा, ये नारकी किसको कहा, उस कर्म समूह को, क्योंकि नरक गति नाम कर्म के साथ वो भी बंधे है ना, उस नरक गति संबंधी को अन्य भी जो कर्म बंधे है, उस कर्म समूह का नाम है कर्म नारकी। यानी कौन सा, नो आगम द्रव्य कर्म नारकी ऐसा, या कर्म द्रव्य नारकी, ये उसका पूरा नाम होगा, यह फुल स्टॉप देना। अभी जो कर्म नहीं है, अन्य जो चीजें है वो क्या है, पाश पंजर यंत्र, पाश समझते ना, नहीं ये पंछियों को पकड़ने के लिए कोई जाल ले वगैरह डालते, उसको कहते पाश। ये आपने सुना को, ये अन्य मत यम उसका पाश डालता है, पाश डालता है वो उसमें अटकाता है, ले जाता है। पाश पंजर यंत्र, ये सब प्राणियों को पंछियों को वगैरह पकड़ने के लिए जो लगा ले लिए जाते हैं ना, उसको ये कहते हैं, सापड़ा कहते हैं मराठी में। आदि नो कर्म द्रव्य जो नारक भाव की उत्पत्ति में कारणभूत होते हैं, वे नो कर्म द्रव्य नारकी है। ये सब ऐसे चीजों को नो कर्म द्रव्य नारकी कह दिया, क्योंकि ये चीजों से वो संबंधी, उसके हिंसा संबंधी उसके भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इसको नौकर्म कह दिया। नौकर्म ने जो कर्म नहीं, वो नौकर्म यहाँ शरीर वन मन वाणी वो वाली नौकर्म की बात नहीं लेना है। अब हमने देखा कि नाम नारकी, स्थापना नारकी, द्रव्य नारकी, अब भाव नारकी। भाव नारकी में भी आगम और नौआगम कहेंगे। आगम यानी जानने वाला जीव, उसमें उसका उपयोग है। तो कहते हैं नारकियों संबंधी प्रावृत का जानकार और उसमें उपयोग रखने वाला जीव आगम भाव नारकी है। नरक गति नाम प्रकृति के उदय से नरकावस्था को प्राप्त हुआ जीव नो आगम भाव नारकी है। देखो यहाँ हम जिस नारकी की चर्चा कर रहे हैं वो उसका पूरा नाम क्या है, नो आगम भाव नारकी। तो वो कैसा है, नरक गति नाम प्रकृति के उदय से नरक अवस्था को प्राप्त हुआ जीव है। इस नारकी समूह का विचार करके नारकी जीव किस प्रकार होता है, यह प्रश्न किया गया है। या भावों की अपेक्षा बात करेंगे, अथवा क्या नारकीय औदयिक भाव से होता है, क्या औपशमिक भाव से होता है, क्या क्षायिक भाव से, क्या क्षायोपशमिक भाव से, क्या पारिणामिक भाव से होता है। ऐसा बुद्धि से विचार कर नारकी जीव किस प्रकार होता है यह पूछा गया। ये तो प्रश्न के ऊपर चर्चा चल रही है, उसका उत्तर अभी नहीं आया है। हाँ, उत्तर अभी देंगे कि नारकी किस प्रकार होता है। उसमें सारे नए लगा के देखे, निक्षेप लगा के देखे और भाव भी, पांच भाव को भी लगा के इन्होंने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर अभी बताएंगे। इस संदेह को दूर करने के लिए आचार्य अगला सूत्र कहते हैं। यानी इतने हमारे मन में प्रश्न खड़े हो सकते हैं। वहां पर होगे कोई अश्विन भाई प्रश्न पूछने वाले, इसलिए यहाँ कहते हैं निरय गति नामाय उदयेण। प्रश्न क्या पूछा था? गति मार्गणा के अनुसार नरक गति में नारकी जीव किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं? तो उसका उत्तर क्या है? नरक गति नाम प्रकृति के उदय से जीव नारकी होता है। यहाँ आते हैं पेज नंबर 31 पर। चौथा का जवाब है, ये पांचवे का। चौथे में जवाब पूछा था, जवाब का स्पष्टीकरण उन्होंने नए निक्षेपों में दिया, भावों में दिया। अब उसका उत्तर ये है। अब कहते एवं भूत नय के विषय रूप। एवं भूत नय किसको कहेंगे? हाँ, वो निक्षेप हुआ, नय किसको कहेंगे? नय उसको, उसको विषय करने वाला वो नय है, नय ज्ञान की पर्याय है। और वर्तमान पर्याय से परिणत वो तो विषय हो गया, वो नारकी हुआ। समझ में आई बात? ये पूरा वाक्य पढ़ेंगे, देखो। एवं भूत नय के विषय रूप, ये औदयिक लिखना, औदारिक नहीं, वो औदयिक। नो आगम भाव निक्षेप की अपेक्षा नरक गति नाम प्रकृति के उदय से जीव नारकी होता है। क्या कहना चाहते हैं? ये नय कौन सा है? एवं भूत नय। वो क्या विषय करता है? कि उस पर्याय से परिणत वो जीव, नरक पर्याय से परिणत जीव को विषय करता है। तो एवं भूत नय का विषय क्या है? उसका कौन सा निक्षेप है? एवं भूत नय का विषय कौन सा है? उस भाव से परिणत। हाँ, तो औदयिक नो आगम भाव निक्षेप की अपेक्षा, वो भाव यानी उस रूप परिणत यानी नो आगम ही है ना, क्योंकि आगम में तो हम द्रव्य उसको जानने वाला जीव लिया था, प्रावृत को जानने वाला जीव लिया था, और उस नरक भाव रूप से परिणत जीव उसमें तो नो आगम को लिया। उसकी अपेक्षा नरक गति नाम प्रकृति के उदय से जीव नारकी होता है। इसलिए पहले उन्होंने पूरे नय और निक्षेप बता चुके थे। अब आगे हर एक के बारे में, हर गति के बारे में वो प्रश्न पूछेंगे। तिरिक्ख गदिये तिरिक्खो नाम कदम भवती। तिरियंच गति में जीव तिरियंच किस कारण से होता है? यहां भी नय निक्षेप और औदयिकादि पांच प्रकार के भावों के आश्रय से पूर्वोक्त विधि से, जैसे हमने नरक पर घटित किया, संदेह की उत्पत्ति का प्ररूपण करना चाहिए। यानी वो सारे कौन से नए होते हैं, किस नए से कौन से तिर्यंश को हम मनुष्य को तिर्यंश कहेंगे, वो सब बताना। वो गाथाएं बताई नहीं उन्होंने, यहाँ छह गाथाएं बताई। ऐसे इस नए से मनुष्य को तिर्यंश कह सकते हैं, उस भाव से परिणत जीव ऐसा लेना उसको। वो निक्षेप भी सब लगा लेना, नाम स्थापना द्रव्य भाव और औदयकारी पांच भावों के नाम लेकर कौन से भाव के कारण वो तिर्यंच हुआ है, ये भी हम पूछेंगे। तो कहते वो जो जो आचार्यों ने ये चौथे सूत्र के प्रश्न के नीचे स्पष्टीकरण दिया है, वैसा ही तिर्यंच के बारे में समझना। अब उसका उत्तर यहाँ देते। तिर्यंच गति नाम प्रकृति के उदय से जीव तिर्यंच होता है, क्योंकि तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई पर्याय से परिणत जीव, यानी नाम कर्म के उदय से जो पर्याय उत्पन्न हुई उस रूप परिणत जो जीव, उसके तिर्यंच संज्ञा का व्यवहार और ज्ञान पाया जाता है। अब मनुष्य मनुष्य की बात यानी संज्ञा का व्यवहार और ज्ञान पाया जाता है यानी तिर्यंच संज्ञा का नहीं नहीं उस जीव को तिर्यंच नाम का व्यवहार होता है उस जीव के साथ तिर्यंच नाम लागू होता है ये व्यवहार हुआ उसका नए निक्षेप की बात है ये तिर्यंच जीव किसे कहना उसके साथ ये नाम पड़ा तिर्यंच नाम पड़ा तो तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से जो पर्याय उत्पन्न हुई जिस जीव की उस जीव को हम तिर्यंच कहते हैं ये हुआ उसके साथ व्यवहार संज्ञा का व्यवहार होने ने उसका नाम तिर्यंच हो जाना और हम उसको तिर्यंच रूप से जान रहे हैं बस इतना ही उसमें ना निक्षेप नहीं लगाना है उसके साथ वो ये तिर्यंच है ऐसा हमें ज्ञान हो जाता है और उस जीव को हम तिर्यंच कहते हैं नाम संज्ञा का संज्ञा का व्यवहार होता है वो नाम निक्षेप वाला निक्षेप नहीं है यहाँ पर तिर्यंच किसको कहना किसके साथ वो तिर्यंच नाम दिया जाता है जो जीव न, वो तिर्यंच नाम कर्म जो तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय है तो उसके उदय में जीव भी उस भाव रूप से परिणत हुआ है उस जीव को हम तिर्यंच कहते भी है और उसको हम तिर्यंच जानते भी है ये कहना चाहते अब मनुष्य गति मनुष्यो नाम कदम भवदी मनुष्य गति में जीव मनुष्य कैसे होता है यहाँ भी हाँ प्रश्न चिन्ह लगाना यहाँ पर क्या कह रहे आप हाँ वैसा ही यहाँ पर भी ले लें कैसे होता है ऊपर क्या किस कारण से होता है लिखा था कदम भवदी किस कारण से होता है वहां क्या लिखा है कैसे होता है लिखा यानी किस कारण से होता है ट्रांसलेशन अलग लिया उन्होंने देव में क्या लिया कैसे होता है आगे भी कैसे होता है लिखा यहां भी पहले के समान नए निक्षेपादि रूप से संदेह की उत्पत्ति का प्ररूपण कहना चाहिए यानी कैसे संदेह हो सकता है वो सब नए और निक्षेप लगाकर फिर इसमें से किसको लेना वो भाव भी लगाना अब उसके उत्तर में कहते हैं मनुष्य गति नामाए उदयेण मनुष्य गति नाम प्रकृति के उदय से जीव मनुष्य होता है क्योंकि मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई पर्याय से परिणत जीव यानी वो तो केवल मनुष्य गति यानी वो तो बाह्य शरीर की बात नहीं है उस जीव की भी पर्याय उस रूप परिणत हुई है जीव के भाव भी उस मनुष्य जैसे हो रहे हैं तिर्यंचों के तिर्यं जैसे भाव रहे नारकियों के भाव उन जैसे हो रहे हैं तो उस पर्याय से परिणत जीव के मनुष्य संज्ञा का व्यवहार और ज्ञान पाया जाता है अब देवगति है देवो नाम कदम्बवदि देवगति में जीव देव कैसे होता है यह सूत्र सुगम है उसका उत्तर देवगति नामाए उदयन तो यहाँ टोटल बताया नहीं निक्षेप नहीं लगाना परंतु अभी वो तो ऐसा ही समझ लेना सब में कहते देवगति नाम प्रकृति के उदय से जीव देव होता है क्योंकि देवगति नाम कर्म से कर्म के उदय से उत्पन्न हुई अनिमादिक पर्याय से परिणत जीव के ये उनके जो कुछ अनिमा लघिमा वगैरह जो गरिमा वगैरह बातें होती है तो हाँ प्राकाम्य वगैरह जो है ना ईशत तो उस देव जीव के देव संज्ञा का व्यवहार और ज्ञान पाया जाता है यानी हम उस जीव को देव जानते हैं उसके साथ ये देव है ऐसा हम नाम उनको रखते हैं अब कहते हैं नरक तिर्यंच मनुष्य और देव ये गतियां यदि केवल अपनी एक एक प्रकृति उदय में आती हो तो नरक गति के उदय से शब्द रह गया यहां पर निरगति उदयेन नेरयो। तो कहते हैं तो नरक गति के उदय से नारकी ब्रह्मा, वहां उदय से शब्द लिख देना, तीर्यंच गति के उदय से तीर्यंच मिला, नीचे से दूसरा पैराग्राफ है ना उसकी सेकंड लाइन, यानी मात्र एक एक नरक गति ही नाम कर्म का उदय चलता हो, अकेला नारकी जीव को एक नरक गति नाम कर्म का ही उदय ऐसा अगर कहेंगे, यानी नाम कर्मों में केवल एक ही नाम कर्म का उदय ऐसा कहेंगे, तो अनेक कर्मों का समूह रूप उदय होता है ना, जैसे हमने बंध की बातें देखी, अभी आप बंध में थे ना वहां पर, तो नरक ने अपना वो विषय नहीं हुआ है विस्तार से, नरक गति का बंध कर रहा है, तो एट ए टाइम 28 प्रकृतियां बंध रही है उसकी, वो नरक गति का वो पैकेज है, उसके साथ ये बंध ही, तभी नरक गति नाम कर्म का उदय है, तो उदय में कौन सी प्रकृति है उसकी बात अभी यहां बताएंगे। फिर से पढ़ते इसको, तो कहते ये जो चार गतियां यदि केवल अपनी एक एक प्रकृति उदय में आती हो तो नरक गति के उदय से नारकी, तीर्यंच गति के उदय से तीर्यंच, मनुष्य गति के उदय से मनुष्य और देव गति के उदय से देव होता है ऐसा कहना उचित है, किंतु अन्य प्रकृतियां भी वहां उदय में आती है जिनके बिना नरक तीर्यंच मनुष्य और देवगति नाम कर्मों का उदय पाया नहीं जाता, यानी वो अकेली एक एक प्रकृति का उदय नहीं है, उसके साथ ये अन्य प्रकृतियां उदय रूप होगी ही होगी, ये कहना चाहते वह इस प्रकार है। अब यहां सब नाम कर्म के उदय स्थान बता रहे हैं, हमने बंध स्थान को याद किया था, आपको याद होगा, तो नरक गति बनती है तो 28 का बंध स्थान होता है, नरक गति युत कहते हैं उसको, नरक गति को इंक्लूड करके गर्भित करके सब मिलकर 28 प्रकृतियां बनती है। अब यहां उदय वाली बात चल रही है, तो ये पहले बताएंगे नारकी जीवों के पांच उदय स्थान है, तो क्या पांच प्रकार के नारकी होते हैं पांच उदय स्थान बताने के लिए, तो क्या होता होगा? हाँ, यानी विग्रह गति में कितने कर्मों का उदय है, वहां पहुंचने पर कौन से अन्य शुरू हो जाती है, फिर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर अन्य कोई प्रकृतियों का उदय होता है, फिर वो उच्छ्वास पर्याप्ति होने पर होता है, फिर भाषा पर्याप्ति होने पर होता है, फिर मरण तक उतनी प्रकृतियों का उदय चलता है, तो नाम कर्म के ऐसे पांच स्थान बताए जाएंगे जिनकी भाषा होती है उनके पांच हो गए, एक इंद्रिय में तो चार ही स्थान हो गए, यानी वो विग्रह गति में पहला स्थान, वहां इतनी प्रकृतियां उदय रूप है, वहां पहुंचते ही और कुछ एक्स्ट्रा प्रकृतियों का उदय चालू हो जाएगा, जैसे नारकानुपूर्वी अभी है विग्रह गति में उदय रूप है, वो नारकानुपूर्वी का उदय बस उतने ही समय के एक दो समय के लिए, बाद में उसका उदय मिट जाएगा, फिर वो वहां पर पहुंचने पर वो वैकिरिक शरीर उसका उदय चालू हो जाएगा, संस्थान नाम कर्म का उदय चालू हो जाएगा, इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग कर्मों का उदय होता है, ऐसे पांच जगह है, तो उसकी बात अभी यहां बताएंगे कौन कौन सी होती है। देखो वह इस प्रकार है, पहले उदय स्थान का अर्थ होता है नंबर ऑफ प्रकृतियां, जितनी उदय रूप है उन प्रकृतियों वाला एक स्थान कहलाता है, तो इसे पांच नारकी जीवों में पांच उदय स्थान किसके, नाम कर्म के हो, अन्य कर्मों की बात यहाँ नहीं लिए वो हाँ देखो उसको उसके ऐसा कहते विग्रह गति का, दूसरा मिश्र का, मिश्र शरीर काल कहते, एक विग्रह गति काल मिश्र शरीर काल, यो कब तक होता है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय पूर्व तक, शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही शरीर पर्याप्ति काल चालू हो जाता है, और वो कब तक चलता है, जब तक उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक, उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होते ही उच्छ्वास पर्याप्ति काल चालू हो जाता है, क्योंकि वो स्वर नाम कर्म तब से चालू हो जाता है, उच्छ्वास नाम कर्म का उदय चालू हो जाता है। अब जब भाषा पर्याप्ति पूरी होती है तब भाषा पर्याप्ति काल कहते, वहां स्वर नाम कर्म का उदय चालू हो जाता है। अब हो उसी समय होने का ही समय, तब से देखो नारकी जीवों के पांच उदय स्थान है, वो कौन से प्रकृति है वो शायद बताएंगे बाद में। 21 विग्रह गति में, वहां पहुंचते ही 25, फिर 27, यानी और एक्स्ट्रा कर्मों का उदय शुरू हो जाता है। ये विहार गति वगैरह परघात वो बाद में चालू हो जाते हैं। 28 और 29 यानी उच्छ्वास नाम कर्म और लास्ट में स्वर नाम कर्म का उदय चालू हो जाता है, तो 29 हो जाते हैं। देखो 21 25 27 28 और 29 प्रकृतियों संबंधी, यानी वो 21 25 उन्होंने संख्या में लिख दी है, 21 25 27 28 29, इनमें 21 प्रकृतियों के उदय स्थान को कहते हैं। ये सब नाम कर्म के उदय स्थानों की बात कर रहे चल रही हूँ। यानी वहां अन्य कर्मों का भी उदय चलेगा कि नहीं चलेगा, ज्ञानावरण दर्शनावरण का यथायोग्य सबका चलेगा, जो जिस गुण स्थान का है उससे उसके मोनिय के भी उदय चलेंगे। यह नाम कर्म की बात चल रही, केवल नाम कर्म की, वह इस प्रकार है। अब ये 21 वाला जो है, जब विग्रह गति में उदय रूप है, उसकी बात यहाँ हो रही है। देखो नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, तेजस और कार्मण शरीर, वैकिरिक शरीर का उदय यहाँ नहीं लिया, क्योंकि जब तक विग्रह गति में है तब वैकिरिक शरीर नाम कर्म का उदय भी नहीं होगा और उसके परमाणु का ग्रहण भी नहीं होगा, ख्याल में, वहां पहुंचने पर चालू हो जाएगा। परंतु तेजस और कार्मण शरीर नाम कर्म का उदय है यहाँ पर। वर्ण गंध रस स्पर्श, नरक गति प्राय ज्ञान पूर्वी, अगुरु लघु, त्रस बादर पर्याप्त, स्थिर और अस्थिर, शुभ और अशुभ, दुर्भग अनादेय, अयशस कीर्ति, निर्माण, प्रकृतियों को लेकर 21 प्रकृतियों संबंधी पहला उदय स्थान होता है। अभी उसमें क्या है कि उसमें से कितनी तो ध्रुवोदयी होती है, 12 ध्रुवोदयी होती है। देखो स्थिर भी और अस्थिर भी, बनते समय स्थिर बंधेगी या अस्थिर बंधेगी, पर उदय दोनों का एट ए टाइम सबको चलता है। कब तक? 13वें के अंत समय तक। इसको ध्रुवोदयी कहते हैं, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, फिर तेजस कारमान, वर्णादि चार, अगुर लघु और निर्माण, कौन सी रहेगी अभी? देखो स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, तेजस कारमाण, वर्णादि चार, अगुर लघु और निर्माण, 12 हो गए ना, ये 12 ध्रुवोदयी है। अब अन्य भी कौन सी ली? कोई ना कोई तो गति होगी ना, ध्रुवोदयी ने कोई भी गति हो, ये 12 का उदय तो है ही है। अब गति और गत्यानुपूर्वी लेना, जिस किसी गति में जाएगी उसका नाम ले लेंगे। हाँ फिर गति, हाँ स्थिर बंध नहीं उदय, हाँ बंध कभी एक साथ नहीं होता है, दोनों का उदय एट ए टाइम चलता है, क्योंकि वो धातु अपने रूप से रहने और धातु अन्य रूप से हो जाने, ये दोनों कार्य चल रहा है ना उसमें, हर समय चलता है। हाँ उसका अभी यहाँ धातु का, यहाँ तो विग्रह गति में क्या कार्य होता था जो यथायोग्य होता है, उसका उदय तो हर समय चलता है। 12 तो ध्रुवोदय बताई, जो गति है और गत्यानुपूर्वी है। हाँ अभी वो ध्रुवोदय नहीं है, पर गत्यानुपूर्वी हमको विग्रह गति में लेना है। तो जाति है, यहाँ शरीर वगैरह नहीं लिए ना, पर वो बादर त्रस या बादर है, ये स्त्रस या स्थावर है, बादर या सूक्ष्म है, पर्याप्त अपर्याप्त, ये तीन ही लेना उसमें। वो प्रत्येक या साधारण वाला पहुंचने पर होगा, उसको अभी नहीं लेना, शरीर संबंधी वहां पहुंचने पर ग्रहण होता है। इसलिए गति जाति यहाँ आपके सामने पुस्तक है ना, उसमें से देखो लास्ट लाइन में नरक गति पंचेंद्रिय जाति, अब ये बीच वाली छोड़ दो, प्रायज्ञान पूर्वी लिया, त्रस बादर पर्याप्त मैंने तीन देखे थे है ना, और फिर जो स्थिरादि तीन में जो स्थिर स्थिर और शुभ अशुभ तो नियम रूप उदय रूप होते हैं, तो स्वर नाम कर्म तो भाषा पर्याप्ति के बाद चालू हो जाता है, तो यहाँ कौन से लेना? दुर्भग अनादेय अयश्य स्थिति, क्योंकि ये नारकी है इसलिए। हाँ हम पढ़ रहे थे 32 पेज, लास्ट लाइन से दोबारा पढ़ते। यहाँ तो विग्रह गति में कौन से उदय रूप है उन प्रकृतियों की बात चल रही। 12 तो ध्रुवोदयी होती है, कौन सी ध्रुवोदयी देखी हमने? स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, तेजस शरीर, कारमान शरीर, वर्णादि 4, अगुर लघु और निर्माण। ये तो 12 तो इसको गिनना ही गिनना। अब ये नरक वाला जीव है तो उसमें क्या लेना है? विग्रह गति में नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, त्रस है, बादर है, पर्याप्त है, और उसके बाद दुर्भग, अनादेय और अयशस कीर्ति, इनको ले लेना। ये उनका पहला उदय स्थान है, उसमें भंग एक ही है। भंग का अर्थ क्या होता है? यदि कोई अलग अलग प्रकृतियां पॉसिबल होती, समझा, दुर्भग के बदले किसी को सुभग भी होता है तो हम उसको भंग कहते हैं। पर नारकियों के यही सारी प्रकृतियों का उदय है वहां पर, इसलिए उसमें भंग एक ही है। यहाँ पर एक ही भंग है उसका। देखो ये शंका पूछ रहे, यह 21 प्रकृतियों वाला उदय स्थान किसके होता है? यानी नारकियों में तो होता है, पर कहाँ पर होता है वो पूछ रहे हैं। उसका समाधान, विग्रह गति में विद्यमान नारकी जीव के यह 21 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। यह उदय स्थान कितने काल तक रहता है? ये सारे की उदय स्थान जो है ना अलग अलग, तो उसको अगर जानेंगे तो ये सब कार्यकारी होगा। इसलिए मैंने बोला था कर्मकांड लगेगा शायद। अभी कर्मकांड में से हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो, तो यह मैंने लिखकर रखा है, द्वितीय दूसरा उत्तरार्ध वो इसका। हाँ चार्ट बनाए ना उसके सारे। हाँ कल लेके आना फिर उस, क्योंकि वो सब में लेने वाला लगने वाला है। नाम कर्म के जो पांच पांच जो स्थान है अलग अलग जीवों के, पांच काल होते हैं नाम कर्म के, उदय के पांच काल होते हैं, उसके चार्ट बनाए हैं सर। कर्मकांड का द्वितीय बुक दूसरा भाग, वहां पहला भाग आपने देखा था, वहां बंध की बात की, यहाँ उदय की बात है। अभी हमने शिविर में बंध वगैरह की बात की थी, वो अलग था। जब कर्मकांड का दूसरा शिविर लिया था तब उसके चार्ट बनाए थे, वो पूरे बोर्ड पर समझाए थे तभी। अपना यहाँ शाम को हुआ है ना विषय, आप नहीं थी, ये भी नहीं थी, मिली भाई थे ना, आप कहाँ थे? कर्मकांड में थे। अच्छा, हाँ देखो ये किसके होता है? तो विग्रह गति में विद्यमान नारकी जीव के यह 21 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। अब शंका, तो नारकी जीव को विग्रह गति कितने समय हो गए, कितने मोड़ लेकर वो नरक में जा सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, एक या दो, तीन मोड़ नहीं होते, क्योंकि उसमें जाने वाला ये पंचेंद्रिय वहां चले जाएगा और वो त्रसनाली में से त्रसमनाली में ही जाना है उसको, उसको दो मोड़ से ज्यादा मोड़ नहीं लग सकते। तो कहते यह उदय स्थान कम से कितने काल तक रहता है पूछा था, कम से कम एक समय और अधिक से अधिक दो समय तक रहता है, यानी दो मोड़ ले सकता है कोई जी, ज्यादा नहीं। उन नारकियों का यह 25 प्रकृतियों वाला उदय स्थान है। वो पहला वाला कितना देखा हमने? 21 वाला, वो किस में होता है? विग्रह गति में। अब वहां जहां नरक बिल में उत्पन्न होना है वहां पहुंचने पर उसके 25 प्रकृतियां हो जाती है, अनुपूर्वी का उदय मिट जाता है, हाँ वैकृत शरीर वगैरह उसका उदय चालू हो जाएगा। यानी देखो शरीर संस्थान वगैरह का उदय वहां पर चालू हो जाता है, अंगोपांग उपघात, और वो प्रत्येक साधारण होता है वो यहाँ प्रत्येक शरीर लेंगे। देखो यहाँ बता रहे, उन नारकियों का यह 25 प्रकृतियों वाला उदय स्थान है, उस स्थान में यही नहीं ये ही, यही का अर्थ है यहाँ ही, ऐसा नहीं, ये ही, ये और ही जुदा जुदा करना, ये ही प्रकृतियां है। इतनी विशेषता है कि पूर्वोक्त 21 प्रकृतियों में से नरक गति अनुपूर्वी को छोड़कर एक यहां ऐड करना है दो नाम, एक नाम है वैक्रिक शरीर ब्रह्मा, वैक्रिक शरीर डालो और दूसरा हिंडक संस्थान डालो, क्योंकि ऊपर है ना वहां पर वेयु शरीर हुंड संठान वेयु शरीर अंकोपांग उघाद पत्ते शरीर। देखो हमने 21 गिनाई थी ना, उसमें नारकानुपुरी को बाद करो, और अभी कौन से नए प्रकृतियों का उदय होगा, वैक्रिक शरीर एक नाम, हुंडक संस्थान ये दूसरा नाम, बाकी नाम वहां लिखे हैं, वैक्रिक शरीर अंगोपांग वहां लिखा हुआ है, उपघात है वहां पर, प्रत्येक शरीर वो भी है। इन पांच प्रकृतियों को मिला देने से 25 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है, समझ में ये बात। यहाँ वहां पर्याप्तियां चालू हो गई ना उसके, सभी वो पहले समय से उसके ये 25 वाला स्थान होगा। पेज नंबर 33 पर चल रही बात। अब नीचे की शंका पूछेंगे, वो उसमें आपने पहली बार लिखा हुआ है ना, अरे बापरे, हाँ डालो उसमें। देखो तीसरी लाइन में वैक्रिक शरीर अंगोपांग लिखा है ना, उसके पहले उसके पूर्व में आपके उसमें हो गए ना, क्या लिखा है उसमें, और शरीर लिखा है, वैक्रिक शरीर भी लिखना है। अरे उनको नव पुस्तक तक सभी पुस्तक अच्छा सारे तो मंगवाए थे हमें, 40 फुल स्क्रिप्ट तो लिख के भेजे थे, गलतियां ही गलतियां। हाँ देखो दो नाम डालो, वैक्रिक शरीर पहला नाम, दूसरा नाम हुंडक संस्थान, फिर वहां जो है उसमें 3-4-5 आंकड़ा लिख दो, वैक्रिक शरीर अंगोपांग उपघात और प्रत्येक शरीर। अब ये सब मिलाकर कितने हुए, 25, 21 थे उसमें से एक नायकाल और 5 मिला है, 25 हो गए। तो ये शंका पूछ रहे हैं, ये 25 प्रकृतियों वाला उदय स्थान किसके होता है। समाधान, जिस नारकी जीव ने शरीर ग्रहण कर लिया है, शरीर के परमाणुओं का ग्रहण शुरू हुआ क्योंकि वो वैक्रिक शरीर अंगोपांग नामकर्म का उदय हुआ, तो उस जाति के ग्रहण भी चालू हो गया, उसके यह 25 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। अब यह उदय स्थान कितने काल तक रहता है, देखो ये पेज पलटने के पहले जरा नीचे फुटनोट देखो, गोमरसार कर्मकांड की गाथा है, 3 नंबर लिखा है ना नीचे, विग्रह कम्म शरीरे शरीर शिष्य निमिष्य चाहिए, विग्रह कम्म शरीरे शरीर मिस्से शरीर पज्जते आणावचि पज्जते कमेण पंचोदय काला। और फिर उसके समय बताए, एकम व दो वी तिन्य समया अंतो मुत्तयम तिसु वी हेठिम कालुणाओ चरिमस्य उदय कालो दु। देखो क्या कहना चाहते, विग्रह कम्म शरीरे यानी विग्रह गति में वो कर्म शरीर काल, शरीर मिश्र शरीर मिश्र काल, शरीर पज्जति शरीर पर्याप्ति काल, आणावचि पज्जते यानी आनापान यानी उच्छ्वास पर्याप्ति काल, और वचि यानी भाषा पर्याप्ति काल, क्रमेण पंचोदय काला क्रम से नाम कर्म के 5 ये जो क्रम से उदय रूप काल है, नाम कर्म के उदय के काल है, स्थान बात अलग है और काल बात अलग है। कौन से विग्रह गति काल, शरीर मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति काल और भाषा पर्याप्ति काल। विग्रह गति में वो तो जो 21 प्रकृतियों का उदय बताया था, वहां पहुंचने पर अनुपूर्वी का उदय मिट जाता है। अब नारकी जीव के लिए वैक्रेक वैक्रेक अंगोपांग हुंडक संस्थान उपघात और प्रत्येक शरीर, इनका उदय चालू हो जाता है। कब तक, शरीर पर्याप्ति पूरी होने के एक समय पूर्व तक। अब बताएंगे उसको, कि यह उदय स्थान कितने काल तक रहता है। अभी आना पेज नंबर 34 पर, 34 नंबर का पेज, उसका समाधान। शरीर ग्रहण करने के प्रथम समय से लेकर, यानी वहां पहुंचा था ना विग्रह गति की बात, वो पहले समय से लेकर शरीर पर्याप्ति अपूर्ण रहने के अंतिम समय तक, यानी शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाती है तो उसका दूसरा काल चालू हो जाएगा, तो अपूर्ण रहने का अंतिम समय है। नेक्स्ट समय में शरीर पर्याप्ति पूरी होने वाली है, उसके एक समय पूर्व की बात है। अर्थात अंतर्मूर्त काल तक यह उदय स्थान रहता है, यह पूर्व, यह मिश्र शरीर काल या शरीर मिश्र काल कहते हैं उसको, वह मिश्र का योग है ना, शरीर मिश्र काल। अर्थात अंतर्मूर्त काल तक यह उदय स्थान है, यह पूर्वोक्त कथन का तात्पर्य है। पूर्वोक्त एक भंग के साथ अब दो भंग हो गए, यानी इसमें भी कुछ अन्य अन्य चीजें नहीं, यही एक ही, यही ग्रुप होगा यहाँ, यही प्रकृतियों का उदय होगा, इसमें किसी को अन्य संस्थान, किसी को अन्य ऐसा कुछ है ही नहीं है। यानी हमने दो देखे कि विग्रह गति का काल, एक वो शरीर मिश्र काल। पूर्वोक्त 25 प्रकृतियों में परघात तथा अप्रशस्त विहाय गति मिला देने पर 27 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। देखो जब वहां शरीर धारण किया तब वो शरीर अंगोपांग संस्थान वो प्रत्येक या साधारण, यहाँ तो प्रत्येक की बात है, और उपघात होता, उपघात का उदय चालू हो गया था। अब शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने परघात और विहाय गति, ये दो का उदय यहाँ चालू हो जाएगा। 25 + 2 ये 27 हो जाता है। शंका, यह 27 प्रकृति वाला उदय स्थान किस काल में होता है, उसका समाधान। शरीर पर्याप्ति रचित हो जाने के प्रथम समय से लेकर आन पान पर्याप्ति यानी श्वासोश्वास पर्याप्ति अपूर्ण रहने के अंतिम समय तक, जब पूर्ण हो जाएगी तो वो दूसरा, वो श्वासोश्वास नाम कर्म का उदय चालू हो जाएगा। अपूर्ण रह के अंतिम समय पर्यंत इस काल में यह 27 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। वह कितने काल तक होता है, जघन्य और उत्कृष्ट रूप से अंतर्मूर्त काल तक होता है। यानी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात जब तक उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई उसके एक समय पहले तक, एक अंतर्मूर्त काल है। यहां तक के सब भंगों का जोड़ 3 हुआ। विग्रह गति का एक भंग लिया, वो मिश्र शरीर वाला एक, और शरीर पर्याप्ति वाला एक। अब पूर्वोक्त 27 प्रकृतियों में उच्छ्वास को मिला देने पर, यानी उच्छ्वास नाम कर्म को मिला देने पर 28 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। यानी यहाँ पर 28 प्रकृतियों का उदय है। अब इनका उदय तो कायम रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। तो यह 28 प्रकृति वाला उदय स्थान किस काल में होता है, जैसे आन प्राण पर्याप्ति के पूर्व हो जाने के प्रथम समय से लेकर भाषा पर्याप्ति अपूर्ण रहने के अंतिम समय तक इस काल में होता है। समझ में है ना, भाषा पर्याप्ति पूर्ण होते ही वहां तो दूसर नाम कर्म का उदय चालू हो जाएगा। वह कितने काल तक होता है, जघन्य और उत्कृष्ट रूप से अंतर्मूर्त काल तक होता है। यहां तक के सब भंगों का जोड़ 4 हुआ। पूर्वोक्त 28 प्रकृतियों में दुस्वर को मिला देने पर, अभी नारकी इसलिए दुस्वर एक ही लिया, मनुष्यों में किसी को दुस्वर किसी को सुस्वर, उसमें वो तो कॉम्बिनेशंस बदलेंगे। 29 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। यह उदय स्थान 29 प्रकृति वाला उदय स्थान किस स्थान होता है, यानी कब होता है, कहते भाषा पर्याप्ति पूर्ण करने वाले के प्रथम समय से लेकर, अब कब तक चलेगा, मरण तक चलेगा, अपनी अपनी आयु स्थिति के अंतिम समय पर्यंत इस स्थान में वो 29 प्रकृतियों वाला उदय स्थान है। अभी इसका उदय निरंतर चलेगा इतना। वह कितने काल तक होता है, तो जो जघन्य आयु होगी नारकी की उतना कहेंगे, जघन्य से अंतर्मूर्त कम 10,000 वर्ष, क्योंकि अंतर्मूर्त जब तक भाषा पर्याप्ति नहीं हुई थी उसको अंतर्मुर्त काल लगा था, उतना कम कर दो, क्योंकि वहाँ 29 का स्थान नहीं था, किसी को 27 का था, किसी को 28 का था। 29 का शुरू हुआ, उसके पहले अंतर्मुर्त उसके नार की पर्याय चली गई है, तो 10,000 वर्ष में से अंतर्मुर्त कम कर दो, तो अंतर्मुर्त कम 10,000 वर्ष, और अधिक से अधिक उत्कृष्ट रूप से अंतर्मुर्त कम 33 सागरोपम प्रमाण होता है। क्या है? भाषा पर्याप्ति रूप ये उदय काल, भाषा पर यानी उसको भाषा पर्याप्ति काल कहते हैं, नाम कर्म का उदय काल है ये। ये 29 प्रकृतियां उनके इतने काल तक, अपने अभी आयु के अंत तक इतने उदय रूप होगी हर समय में, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगे। भाषा पर्याप्ति ये सब होने मिलकर अंतर्मूर्त लगता है, इसलिए यहाँ तक सब भंगों का योग 5 हुआ। अब यहीं रुकेंगे हम, तिर्यंच गति की बात कल देखेंगे, कल वो कर्मकांड ले आना, उसमें से थोड़े नाम कर्म के उदय स्थान देख लेंगे हम। दूसरा भाग कर्मकांड का द्वितीय पुस्तक। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मिली भाई।